समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट तन्वी खुराना।
Hello and good afternoon. You are tuned to Parikrama on 100.1 FM. I am Tanvi Khurana and with me today is my co-host Akarshita. She has already introduced me and herself. And for all of you, the listeners, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. So let's begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi to participate in Asia-Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation in Delhi today.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस फॉर सिंगल फेज असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा एंड थर्ड एंड फाइनल फेज ऑफ पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर टू एंड दिस इवनिंग।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों के लिए 6 आयोग गठित करने की घोषणा की।
आईएमडी इश्यूज रेड अलर्ट फॉर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इन उत्तराखंड टिल टुमारो। And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we will talk about International Day of South-South Cooperation and Tarang Shakti.
South-South Cooperation दक्षिण के देशों और लोगों के बीच एकजुटता की अभिव्यक्ति है, जो उनकी राष्ट्रीय हित, उनकी राष्ट्रीय और सामूहिक आत्मनिर्भरता और सतत विकास के लिए 2030 तक के एजेंडे सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देना है। दुनिया भर में हर साल 12 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन मनाया जाता है। ये दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हर वर्ष में किए गए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास को चिन्हित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर करने का अहम दिन है। साउथ साउथ कॉपरेशन के माध्यम से विकासशील देश अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज्ञान, कौशल, विशेषज्ञता और संसाधन साझा करते हैं।
द फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन वॉज ऑब्जर्व्ड इन 2011 टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन। द जनरल असेंबली इन इट्स रेजोल्यूशन 58/220 डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन ऑन 12 सितंबर every year. The date commemorates the adoption of 1978 of Buenos Aires Plan of Action for promoting and implementing technical cooperation among developing countries. This UN office is in charge of promoting the International Day of South-South Cooperation, which this year shares the theme A Better Tomorrow Through South-South Cooperation. It is a chance to assess advancements and emphasize both opportunities and challenges for cooperation between countries in the Global South along with new trends. During United Nations Day week, there will be a chance to highlight significant South-South cooperation actions and initiatives by member states, the UN system, the private sector and civil society in tackling the most urgent goals of 2030 agenda. It is a chance to delve further into different regions and examine the advancement of South-South cooperation in achieving regional and global objectives, aiming to pave the way for a more sustainable and inclusive future.
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना और इसे लागू करना है। इसके लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन बापा अपनाया गया और अब इसे दक्षिण सहयोग के मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है। तो आइए जानते हैं दक्षिण सहयोग के बनाने के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य जो है तन्वी की विकासशील देशों को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है, प्रौद्योगिकी होती है, उसका उपयोग करके उसका समाधान कैसे निकाला जाता है उसको बताना है, क्योंकि बहुत ढेर सारी जब कंट्रीज हैं वो एक साथ आती हैं और अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करती हैं तो उससे विकास जो है वो बढ़ता है और ऐसी भी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज बन जाती हैं।
जी, एनकरेजिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू वर्क टुगेदर बाय शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर्ड इश्यूज एंड ब्रॉडर एक्सेस टू एग्जिस्टिंग नॉलेज।
सबसे कमजोर देशों, जमीन से घिरी सीमाओं वाले देशों, छोटे द्वीप देशों और प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों से सबसे अधिक प्रभावित देशों के मुद्दों और जरूरतों को समझना और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में उनकी बढ़ती भागीदारी का समर्थन करना ही इसका उद्देश्य है।
एक्सपैंड एंड इम्प्रूव ग्लोबल डेवलपमेंट कोलैबोरेशन बाय कंबाइनिंग रिसोर्सेज टू एनहांस द इम्पैक्ट ऑफ दीज कोलैबोरेशंस।
और विकासशील देशों के बीच संचार को बढ़ाना, साझा मुद्दों की अधिक समझ, ज्ञान और अनुभव तक व्यापक पहुंच और विकास चुनौतियों का समाधान करने में एक नए ज्ञान का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है।
सपोर्ट डेवलपिंग नेशंस इन पार्टिसिपेटिंग मोर एक्टिवली इन ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इन एक्सपैंडिंग ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट।
और इसके साथ ही विकासशील देशों के बीच समानता और पारस्परिक लाभ पर आधारित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की यह सुविधा भी प्रदान करता है।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टुडे असर्टेड दैट कंट्रीज डिफेंस सेक्टर इज मूविंग अहेड रैपिडली विद न्यू रिजॉल्व ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। द मिनिस्टर वॉज स्पीकिंग आफ्टर विटनेसिंग एन एयर शो ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ तरंग शक्ति एक्सरसाइज, द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज अंडर वे एट जोधपुर इन राजस्थान टुडे। द डिफेंस मिनिस्टर सेड तरंग शक्ति इज एम्ड एट शोकेसिंग कंट्रीज मिलिट्री केपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथनिंग इंडियन international cooperation among the participating nations. He called upon the friendly nations to elevate partnership to a new height in view of the evolving global challenges.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की बढ़ती सैन्य ताकत की सराहना करते हुए कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भारत रक्षा उपकरण आयात करता था, लेकिन अब 90 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है।
हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर्स, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं।
This strategically significant exercise has drawn participation from various countries featuring a diverse array of fighter jets and aircraft. More on this from our correspondent.
The skies of Jodhpur thundered with the roar of mighty flying machines, attack helicopter Prachanda and Sarang, Suryakiran aerobatic team along with fighter jet LCA Tejas thrilled the gathering with their daredevil stunts and stunning aerial performances. In the second phase of Tarang Shakti, United States fighter jets F-16 A-10, United Arab Emirates F-16, Australia EA-18, Japan F-2 and Greece F-16 have participated and displayed their prowess in the exercise. Singapore C-130, Sri Lanka Super King B-200, United States KC-135, UAE Global 6000 also displayed their aerial skills. The exercise provides a unique platform for building mutual trust, exploring avenues for interoperability and fostering strategic cooperation among the participating nations. The first phase of the exercise was conducted from 6th to 14th of the last month and the second phase will culminate on 14th September. Bhupen Singh from Jodhpur Air Base for Akashwani News.
सैन्य अभ्यास के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX-24 का उद्घाटन किया। जोधपुर में IDAX के इस संस्करण का उद्देश्य तरंग शक्ति 2024 में भाग लेने वाले वैश्विक वायुसेना के निर्णय निर्माताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए स्वदेशी कौशल और भारतीय विमानन उद्योगों की अदम्य भावना को प्रदर्शित करना है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO टुडे हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन अपकमिंग एंटरप्राइज सर्वेज अराउंड द कंट्री। द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन एंगेजिंग विद वेरियस बिजनेस एसोसिएशंस एंड स्टेक होल्डर्स टू डिस्कस सर्वेज दैट विल शेप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक एंड बिजनेस लैंडस्केप। फाइव मेजर एंटरप्राइज रिलेटेड इनिशिएटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वर डिस्कस्ड एट द कॉन्फ्रेंस। NSSO डायरेक्टर General Geeta Singh Rathore said that these surveys are designed to provide a comprehensive picture of the non-agricultural sector of the economy on an annual basis and serve as a vital input for compiling GDP and GSDP figures, aiding in macroeconomic estimations.
आज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें हम लोगों ने एसोसिएशंस को इसलिए बुलाया था कि ताकि वो अपने मेंबर्स को अवेयर करा सकें कि ये सर्वेज होने वाले हैं और उन सर्वेज में हम लोगों को डेटा कलेक्शन में हेल्प होगी। जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी सर्वे का, सारा डेटा हमारे मौसपी के वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। उसको कैसे यूज करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, उसकी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस और मैनुअल्स उसमें दिए जाते हैं, जिससे कि कोई भी हमारे वेबसाइट पे जाके जिस भी इंटरेस्ट का
Deputy Director General Employment in the Ministry of Labour and Employment Amit Nirmal said that the survey will provide a clear picture of the employment scenario in the country.
एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज हो रहा है तो उसके अंदर जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका एम्प्लॉयमेंट डेटा भी कैप्चर होता है। फिर दूसरा सर्वे जो स्टार्ट हुआ है वो एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं, जो सर्विस सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर है, इसका एम्प्लॉयमेंट डेटा भी कैप्चर हो रहा है। तीसरी चीज जो रह गई थी वो था रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर्स की सर्विस सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट, और ये बड़ी अच्छी बात है कि MOSPI अब उस सर्वे को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर इन तीनों सर्वे को आप कंबाइंड करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर सिनेरियो हमें पता चल जाएगा।
Confederation of Indian Micro, Small and Medium Enterprises President Mukesh Mohan Gupta said that the government during the conference sought suggestions from the industry. He recommended including data about stressed assets in the survey.
तो एमएसएमई की तरफ से मैंने उनको यही बताया कि भाई देखिए, एक तो ये होना चाहिए कि हमारे जो स्ट्रेस एसेट्स हैं उनका भी एक डाटा होना चाहिए इस सर्वे में, क्योंकि अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है इस बजट में कि जो स्ट्रेस या एसएमए कैटेगरी की जो एमएसएमईज हैं उनको भी गवर्नमेंट गारंटीड लोन मिलेगा। तो जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन सी स्ट्रेस एसेट्स हैं तब तक ये जो फैसिलिटीज हैं ये मिल नहीं पाएंगी।
Nearly 150 participants, including representatives from about 70 business associations covering all major sectors, attended the conference.
तन्वी, आजकल हम देख रहे हैं कि ज्यादातर युवा रोजगार के क्षेत्र में कृषि को कम चुनते हैं, पर हमारे पास हिमाचल प्रदेश की एक खास स्टोरी है जहां मशरूम उत्पादन से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण युवाओं के लिए मशरूम उत्पादन रोजगार का शानदार जरिया बन रहा है। बीते कई वर्षों में कई उत्पादकों ने मशरूम की खेती को रोजगार के तौर पर अपनाया है।
हिमाचल प्रदेश देश भर में मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में 9वें स्थान पर है। प्रदेश के सोलन को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। आज से लगभग 27 वर्ष पूर्व 1997 में इस शहर को ये नाम दिया गया। बीते 10 सितंबर को सोलन में राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया। सोलन स्थित मशरूम अनुसंधान निदेशालय देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसके देश भर में 32 मशरूम समन्वयक परियोजना केंद्र हैं। यहां से मशरूम उत्पादन के गुर सीखकर विभिन्न राज्यों के किसान आर्थिकी सुदृढ़ कर दूसरों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। सोलन के मशरूम अनुसंधान निदेशालय द्वारा अब तक मशरूम की कई किस्में विकसित की गई हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर काफी मांग है। यहां विकसित कीड़ा जड़ी के नाम से प्रसिद्ध कार्डिसेप्स मशरूम अपनी कीमत के साथ साथ औषधीय गुणों के लिए भी विशेष पहचान बना चुकी है। निश्चित रूप से मशरूम उत्पादन के माध्यम से अनेक लोग अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने में सक्षम हो रहे हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
An international travelling exhibition, Vaccines Injecting Hope, was inaugurated in Bengaluru the day before yesterday. It provides interesting insights into the world of vaccines and how it helped the world in countering the COVID pandemic. The exhibition is curated by the National Council of Science Museums and Science Museum Group, London. The exhibition set up in Vishveshwaraya Industrial and Technological Museum in Bengaluru will be till 28th of February next year. More on this from our correspondent.
The exhibition Vaccines Injecting Hope in Visheshwaraya Museum is drawing lot of children and science enthusiasts. It speaks about the arrival of new virus corona and how a new vaccine was developed to counter it and how this vaccine underwent rigorous trials, its mass production and how systematically it was administered to the citizens. National Institute of Virology in Pune played a vital role during the pandemic time. Dr. Pragya Yadav, who is a scientist in the institute, was present during the inaugural of the exhibition and shared her views with Akashwani. After visiting the exhibits,
I am Dr. Pragya Yadav from Indian Council of Medical Research, National Institute of Virology, Pune, and I lead BSL-4 facility there. During the pandemic, we worked with Bharat Biotech on co-vaccine. I am very glad the National Council of Science Museum taken that task to showcase the success of India's story on not only the making the vaccine, but how we vaccinated the population and how we came out with the pandemic. And these lessons which we learned in pandemic would be very, very useful for the future, not only the preparing ourselves, but also inspiring the young generation to become scientists. And recently, WHO has declared international health emergency concept. So I'm sure that the children will read all these and they will get aware about diseases and how the stigma should not affect them and also the society.
The exhibition gives us hope on countering viral infections in future and removes misconceptions about the vaccines. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
बिहार में राशन कार्ड जांच के तहत आधार सत्यापन और ईकेवाईसी का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में 8 करोड़ 35 लाख से अधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ता हैं। पिछले 4 साल से उनका ईकेवाईसी सत्यापन हो रहा है। अब तक 5 करोड़ से अधिक राशन कार्ड उपभोक्ताओं के ईकेवाईसी सत्यापन किए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थियों का भी पता चला है। उनके नाम भी लाभार्थियों की सूची से हटाए गए हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
बिहार में 8 करोड़ 35 लाख से अधिक उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ ले रहे हैं। पिछले 4 साल में आधार सत्यापन और ईकेवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन के कारण 16,37,000 से अधिक फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव एन सरवण कुमार ने बताया कि आधार सत्यापन के चलते बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थियों का पता चला है। 40 लाख फर्जी लाभार्थी पकड़े गए हैं जिनका नाम हटाया गया है।
हम लोगों ने अभी ईकेवाईसी का भी काम कराया जा रहा है। ईकेवाईसी में ऑलरेडी 61% लोगों का, कितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे 8.35 करोड़ जो कार्डधारी हैं, उन सभी लोगों का हम लोग बना रहे हैं। उसमें 5 करोड़ से ज्यादा यानी 61% लोगों का ऑलरेडी ईकेवाईसी हो गया। बाकी लोगों का भी हो रहा है। कुछ लोग जैसे बाहर काम कर रहे हैं, तो ये ईकेवाईसी कराने के क्रम में हम लोगों का लगभग 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों का हटाए हैं, लगभग 55 लाख लोगों का नाम जोड़ा भी गया।
उन्होंने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा बड़ी संख्या में प्रवासी बिहारी दूसरे राज्यों में उठा रहे हैं। बिहार के प्रवासी मजदूरों को अब अपना खाद्यान्न दूसरे राज्यों में लेने में परेशानी नहीं हो रही है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा उठाकर करीब 90 लाख लोगों ने खाद्यान्न लिया है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
The voting for Dekho Apna Desh People's Choice 2024 is open until 15th of this month. The aim of this nationwide poll is to engage with citizens to identify the most preferred tourist attraction sites and understand tourist perceptions across 5 categories, which are spiritual, nature, wildlife, adventure and cultural heritage. The others category will allow citizens to vote for their personal favorites, which will help in discovering unexplored tourist places in the country. This initiative was launched by Prime Minister Narendra Modi in March this year in Srinagar. More on this from our correspondent.
Under this initiative, people can vote across 5 categories. These categories are spiritual, cultural and heritage, nature and wildlife, adventure and other. Besides the 4 main sections, the other category is where one can vote for their personal favorite destination and help uncover hidden tourism gems in the form of unexplored tourism attraction and destinations, including vibrant border villages, wellness tourism and wedding tourism. There is also a dedicated portal wherein users can vote across categories through their mobile number and email ID. The outcomes will help determine the top tourist attractions of India, which will receive substantial support and investments from key stakeholders.
देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी. ये जन भागीदारी से निर्णय होगा.
Through the initiative, the government seeks to promote the preservation of cultural landmarks and traditions, ensuring their longevity for future generations. This will also allow help in understanding lesser known tourist locations that people would like to visit apart. Adarsh for Parikrama, Akashwani News, Delhi.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we will talk about three brave women who fought against colonialism. They are Velu Nachiyar and Kuili from Tamil Nadu and Subhadra Kumari Chauhan from Uttar Pradesh. Veera Mangai, the brave woman Velu Nachiyar, was the first Indian queen to wage war with the East India Company in India. She was queen of Sivaganga in Tamil Nadu from 1780 to 1790.
Velu Nachiyar, the princess of Ramanathapuram, was trained in many methods of combat, including war match weapons usage, martial arts like Valari, Silambam, horse riding and archery. She was a scholar in many languages and was proficient in languages like French, English and Urdu.
When her husband, Muthu Vadaganada Peruvudaya Devar, was killed in a battle with British soldiers, she was drawn into the conflict.
During this period, she formed an army and sought an alliance with Hyder Ali with the aim of launching a campaign against the East India Company in 1780.
When Velu Nachiyar found the place where the British stored their ammunition, she arranged a suicide attack on the location, blowing it up. She re-inherited the kingdom of her husband and ruled it for 10 more years. Velu Nachiyar died on 25th of December 1796.
Kuili, army commander of Queen Velu Nachiyar, is considered as the first female martyr in the Indian history.
Kuili was born in the 18th century at Sivagangai district. She was a devout commander of Velu Nachiyar and had saved her life on many occasions. Seeing her loyalty and bravery, she was made the commander-in-chief of the women wing of her army.
In 1780, while attacking a fort of the East India Company, she applied ghee on her body, set herself ablaze and jumped into the armory of the East India Company, securing victory for Velu Nachiyar.
Well-known poet and freedom fighter Subhadra Kumari Chauhan was born in Nihalpur in Allahabad district on 16th of August 1904. Her first poem was published when she was just 9 years old. She joined the Indian nationalist movement and used poetry as a medium to inspire people to join the cause.
She is recognized for her evocative patriotic poem, Jhansi Ki Rani, which is also among the most recited poems in Hindi literature.
Singhasan hil uthe raj vanshon ne bhrikuti tani thi, budhe bharat mein bhi aayi phir se nayi jawani thi, gumi hui azadi ki kimat sab ne pehchani thi, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी.
Through her works, she spoke about gender and caste discrimination faced by women.
Chauhan eventually became the first woman satyagrahi in 1923. She was arrested twice in the struggle from 1924 to 1942.
Chauhan, who passed away on February the 15th, 1948, at the age of 44 years in a road accident, published 88 poems and 46 short stories. That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
And in business news today, India's equity benchmark indices registered record high closing levels in today's trading session amid positive global cues. Both the indices hit their fresh all-time highs, with the BSE Sensex crossing 83,000 level mark and the NSE Nifty at 25,433 in the intraday trade. In the Indian bullion market at 4 p.m., the 24-carat gold was trading at 72,290 rupees for 10 grams, silver 9.99 fine is trading at 84,880 per 1 kilogram.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस. श्रोताओं, आज सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार जय किशन दयाभाई पंकल की आज पुण्यतिथि है, और इन्होंने अपनी जोड़ी संगीतकार शंकर सिंह रघुवंशी के साथ मिलकर बनाई और शंकर जय किशन नाम से प्रसिद्ध हुए. फिल्म बरसात में उनकी जोड़ी ने जिया बेकरार है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन जैसा सुपरहिट संगीत दिया. फिल्म की कामयाबी के बाद शंकर जयकिशन बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए और उनके मशहूर गाने थे मेरी आंखों में बस गया कोई रे, जिया बेकरार है आदि. उन्हें 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया.
बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में. बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में.
Today is the birth anniversary of Paul Walker, an American actor. He was best known for his role as Brian O'Connor in the Fast and Furious franchise. Paul Walker began his career as a child actor in 1980s and rose to international fame by starring in the Fast and the Furious in 2001. We have a song which is dedicated to him, See You Again by Wiz Khalifa and Charlie Puth. So let's hear that.
About it when I see you again, when I see you again.
Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through.
आज हिंदी के विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रांगीय राघो की पुण्यतिथि है. इनका मूल नाम टीएनबी आचार्य था. वे रामानुजाचार्य परंपरा के तमिल देशीय आयंगर ब्राह्मण थे. विदेशी साहित्य को हिंदी भाषा के माध्यम से हिंदी भाषी जनता तक पहुंचाने का महान कार्य रांगीय राघो ने किया.
And we have some news from sports. In hockey, defending champions India defeated Korea 3-1 to register their fourth consecutive win at the Men's Asian Champions Trophy tournament in Hulunbuir, China. Arijit Singh Hundal and skipper Harmanpreet Singh were the goal scorers for India against the Koreans.
आज प्रसिद्ध अभिनेता, गायक, पत्रकार और लेखक रंजन की पुण्यतिथि है. उन्होंने तमिल फिल्म अशोक कुमार से फिल्मी दुनिया में पदार्पण किया था. आइए सुनते हैं उनकी फिल्म चंद्रलेखा से ये गीत.
ये जिसे ढूंढते फिरते थे मोर नैना, मोर नैना, वो यहाँ चुकी है.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और तन्वी को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार.
नमस्कार.